सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज हमारी चर्चा का फोकस है प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, भारत इटली के द्विपक्षीय संबंधों को नया विस्तार। इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। अम्बेसडर वाधवा, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
अम्बेसडर वाधवा, प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा उनके 5 देशों के दौरे का आखिरी पड़ाव है। आप इटली में हमारे पूर्व राजदूत रह चुके हैं, तो आपने न केवल भारत इटली के संबंधों की प्रगति देखी है बल्कि इसे आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इस यात्रा में अपने मीडिया ब्रीफिंग दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश अब अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं, तो सबसे पहले चलिए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की।
अम्बेसडर वाधवा, प्रधानमंत्री का ये जो इटली दौरा है, ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत कैसे बनाएगा, और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को अपग्रेड करके एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है, तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण है ये बदलाव?
देखिए, भारत और इटली के जो संबंध हैं पिछले कुछ सालों में हमने देखा है इसमें लगातार प्रगति हुई है। और 2015 के पहले भारत और इटली के संबंधों में एक नीचाई देखी गई थी, जो क्योंकि मरीन्स का इशू हमारे सामने आया था और उसके साथ साथ भारत और इटली के संबंध काफी नीचे चले गए थे। इटली की जो इन्वेस्टमेंट थी भारत में वो यूरोपियन देशों की तरफ से देखा जाए तो सबसे ज्यादा थी एक समय पर। उसके बाद इटली दूसरे नंबर पर था, लेकिन जो मरीन्स इशू था उसके चलते इन संबंधों में एक गिरावट आई। 2014-15 के बाद हमने देखा जब भारत और इटली ने इस इशू को ब्लैक बर्नर पर रखा और दोनों ने डिसाइड ये किया कि इसकी मध्यस्थता की जाए, तो जो स्पेशल कोर्ट है उसके तहत इस केस को ले गए दोनों देश आपसी सहमति के साथ में। और उसके बाद से हमने देखा है कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। तो इस बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इटली गए हैं ये उनकी पहली बायलैटरल विजिट है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री मोदी कई बार इटली जा चुके हैं लेकिन किसी और संदर्भ में गए थे। और इस बार इंडिया इटली की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसको उन्होंने स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है। इस बार जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है उसमें जो व्यापार है और इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके साथ साथ रक्षा और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, एजुकेशन और काउंटर टेररिज्म के ऊपर, फाइनेंसिंग के ऊपर, कोऑपरेशन के ऊपर भी बात हुई है। तो बहुत सारे मुद्दे इस विजिट में उठे हैं।
अम्बेसडर वाधवा, आपने भी कहा कि इस दौरे के दौरान बहुत चीजों पे दोनों देशों के बीच में बात हुई और आपने जैसा कहा कि आर्थिक उसमें जो एक सहयोग है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो नई दिल्ली और रोम के बीच 2025 में 16.77 बिलियन डॉलर्स तक का व्यापार हुआ था और प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच में 2029 तक ट्रेड जो है व्यापार है उसको 23.2 बिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 20 बिलियन यूरो से ज्यादा पहुंचाने का एक लक्ष्य तय किया गया है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है।
अम्बेसडर बाधा, अभी आपने सुना जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश बहुत मजबूती से अपने लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो भारत और जो इटली है, दोनों देश अपनी अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, भारत की अपनी स्ट्रेंथ है, हमारे पास एक बहुत ही बहुत बेहद गुणकारी लोग हैं, बहुत स्पेशल हमारा टैलेंट पूल है, हमारी एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है, और वहीं जो इटली है उसके पास अपनी वो एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। तो दोनों देश अपनी अपनी जो उनकी विशेषताएं हैं उनको कैसे अपने दोनों के व्यापार को और दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, भारत और इटली की जो इकोनॉमीज हैं काफी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं दोनों के बीच में, और जब जॉइंट एक्शन स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान निर्धारित किया गया था 2025-2029 का, तो उसमें ये तय हुआ था कि ये जो रोड मैप है बायलैटरल कोऑपरेशन का, उसमें व्यापार और इन्वेस्टमेंट एक अहम उसका स्तंभ रहेंगे, और उसके चलते दोनों देशों ने काफी कोशिश करी है कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें जो प्रायोरिटी एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो इटली की तरफ से जो इनोवेशन है और फैशन है और लग्जरी है जिनके लिए इटालियन कंपनीज जानी जाती हैं, एक बहुत ही वाइब्रेंट एसएमई सेक्टर है जिसके चलते इंडस्ट्रियलाइजेशन में इटली यूरोप में पहले नंबर पर एक समय पर पहुंच गया था। तो मशीनरी के तौर पर देखें तो इटली दुनिया भर को अपनी मशीनरी सप्लाई करता है। तो इसके चलते जो जो क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें हमने देखा है कि भारत के साथ इटली की काफी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं। इसी के चलते जो 800 और जो कंपनियां इटली की भारत में आजकल सक्रिय हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे खाद्य पदार्थ हुए, जिसमें कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक बहुत ही अहम सेक्टर है। भारत में हमने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन और रेफ्रिजरेशन और फूड सिक्योरिटी के ऊपर काफी चर्चा काफी सालों से हो रही है, किस तरह से जो फूड प्रोडक्शन है उसको बचाया जा सके और जो वेस्टेज है उसको कम किया जा सके, तो उसमें इटालियन कंपनीज काफी सक्रिय हैं। क्लीन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के जो क्षेत्र हैं उसमें इटालियन कंपनीज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो भारत ने देखा है कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उसकी जो डिमांड है इटली में वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो 5-6 ऐसे सेक्टर्स भारत के हैं जो कि लेबर इंटेंसिव हैं, लेदर आप देख लें और उसके साथ साथ टेक्सटाइल्स वगैरह, तो ये सभी सेक्टर्स इटली में इनकी काफी डिमांड बढ़ी है। तो ये जाहिर है कि जो टारगेट इन्होंने सेट किया है 20 बिलियन यूरो का एनुअल ट्रेड बाय 2029, मुझे लगता है उससे पहले ही ये पार हो जाएगा।
जी, अभी आपने भी कहा और अब प्रधानमंत्री ने भी आज अपनी मीडिया ब्रीफिंग में ये जो इटली की हम बात कर रहे थे कि उसकी जो एक विशेषता है उसकी की डिजाइनिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में जो गुणवत्ता में उसकी उसके लिए जाना जाता है, प्रधानमंत्री ने अपने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस पर भी एक टिप्पणी की थी, चलिए सुनते हैं।
इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है, इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे।
अम्बेसडर वाधवा, अभी जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि दोनों देशों की उन्होंने जो हमारी विशेषताएं हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स, उनकी बात की, फिर उन्होंने कहा डिजाइन एंड मेक इन इटली एंड इंडिया एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार पिछले 11 साल से जो भारत में सरकार है, पूरा फोकस जो रहा है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की रहा है, और अब इसमें हम दूसरे देशों के साथ भी जो साझेदारी कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
तो हमने जैसा देखा है कि जैसे कि आपने कहा, भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर काफी जोर दिया जा रहा है और उसके चलते काफी सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, जैसे कि पीएलआई स्कीम है जिसका मकसद यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत में उसको 15% से लेकर जीडीपी की 15% से लेकर 24% 25% तक ले जाया जा सके। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स के लिए भी काफी जोर दिया जा रहा है, लेकिन वो तभी संभव होगा जबकि भारत में जो एक्सपोर्ट रिलेटेड वस्तुएं हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, और इसके लिए एक इनपुट चाहिए, जो फॉरेन पार्टनर्स हैं उनके साथ काम करना जरूरी हो जाता है। तो इटली का जो डिजाइन और जो प्रिसिशन प्रधानमंत्री ने जिक्र किया जिसका उसके चलते भारत में ये जो स्केल है उसको आगे कर और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल सकता है। इसी तरह जो इटली के जो फिनटेक और फैशन की जो एरियाज हैं, भारत में जो मोबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी, इटली और इंडिया के बीच में मोबिलिटी एग्रीमेंट भी साइन हुई है और इसके चलते जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो और जो टैलेंट है भारत का वो इटली में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अपने स्पीच में आज उसका जिक्र किया।
प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान एक और फोकस एरिया था जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईमैक। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने कल रोम पहुंचने के बाद इसके बारे में ट्वीट भी किया था। पिछले कुछ सालों में जब दुनिया ने किसी न किसी वजह से सप्लाई चेन में रुकावट देखी है तो आईमैक में को बढ़ावा देना और इसमें सहयोग कितना जरूरी है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इटली के लिए भी, जो कि कुछ साल पहले तक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा था लेकिन उसके बाद बाहर हो गया था।
बिल्कुल, आपने जैसे सही कहा, क्योंकि भारत और इटली आईएमएफ के प्राथमिक पोल्स हैं। भारत एक तरफ है और इटली दूसरे एंड पर है। बीच में दूसरे जितने भी पार्टनर्स हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया है, यूएई है और ग्रीस है, इस तरह के कंट्रीज और इसराइल को मिला लें उसमें, ये सभी कंट्रीज आईएमएफ के प्रमुख पात्र हैं। आईएमएफ का क्या मतलब है? आईएमएफ का मतलब यह है कि जो सप्लाई चेन्स इस एरिया में डेवलप हो सकती हैं इस कनेक्टिविटी के थ्रू, उसके साथ साथ जो गैस की पाइपलाइंस हैं और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं वो सभी इसी कॉरिडोर के थ्रू डेवलप हो सकती हैं, और रेल रोड्स का जो एम्फेसिस है आईएमएफ का उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और जो पोर्ट्स हैं दोनों एंड्स पर भारत में और इटली में उनके चलते जो व्यापार है उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी। तो ये सभी 5 या 6 सेक्टर्स हैं जो आईएमएफ के थ्रू डेवलप हो सकते हैं, और इटली और भारत दोनों आईएमएफ के डेवलपमेंट में इक्वल साझेदार हैं। उनको उनकी बहुत चाहत है कि आईएमएफ सक्सीड करे ताकि इन सभी क्षेत्रों में भारत आगे बढ़े। और आपने जैसे कहा कि इटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया था, उसने यही देखा है कि बीआरआई जो है वो ओपेक है और उससे कई सारे प्रॉब्लम्स उपस्थित हुए हैं दूसरे देशों में, और इटली नहीं चाहेगा कि उसको रेप्लिकेट किया जाए इस कॉरिडोर में।
अम्बेसडर अनिल वाधवा, आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने आपने वक्तव्य और अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
श्रोताओं, सुर्खियों के आज के अंक को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में